ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस भगवद्गीता सार कार्यक्रम में। और आज हम भगवद्गीता का 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है, उसके ऊपर वर्णन करेंगे। हमने 14th चैप्टर प्रकृति के तीन गुण में देखा भगवान किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन करते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमगुण। और सारांश में भगवान उसमें बताते हैं कि कैसे व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में बंध जाता है इन गुणों के प्रभाव से, और यदि व्यक्ति को स्वतंत्र होना है, इन गुणों के प्रभाव को तोड़ना है या ऊपर उठना है, तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। माम चायो विचारेना भक्ति योगेना सेवते। प्रश्न उठता है, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, पर शरण लेने में एक विपदा है, एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है? हम एक पैर भौतिक दुनिया में और दूसरा पैर आध्यात्मिक दुनिया में नहीं रख सकते। अगर हमें भगवान की शरण लेना है तो हमें इस भौतिक दुनिया से विमुख होना ही पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण अब ये 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है, उसमें समझाते हैं अर्जुन ये भौतिक दुनिया क्या है और इसे विरक्ति कैसे प्राप्त करी जा सकती है, और आध्यात्मिक जगत क्या है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे इस 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहले श्लोक में बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। कहते हैं श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलं मधा शाखं अश्वथं प्राहुरव्ययं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तवेदास वेदवित्। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं, हे अर्जुन, एक वृक्ष है, बैनियन वृक्ष, अश्वथम जिसको कहा जाता है, जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जिसकी जड़ें ऊपर हैं। आपने किसी ने ऐसे वृक्ष को देखा है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो वृक्ष है ये भौतिक जगत को दर्शाता है। ये ऐसा वृक्ष हम सब ने देखा है, और वो देखा है पानी की परछाई में। अगर आप नदी के पास गए हैं, वहाँ नदी के पास कोई वृक्ष है, तो आपने देखा होगा शाखा नीचे नज़र आती हैं और उसकी जड़ें ऊपर नज़र आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस एनालॉजी से? भगवान बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्जुन, हमारा जो घर, हमारा जो रियल होम है, वो इस भौतिक जगत में नहीं, वो आध्यात्मिक जगत है। ये जो भौतिक जगत है एक प्रकार की ये परछाई है, जहाँ पे व्यक्ति अपनी खुशी या आनंद की खोज में लगा है। सोचिए, किसी व्यक्ति को पानी के परछाई में आम का फल नज़र आता है और पानी में कूदकर अगर आम के फल को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो क्या उसको कभी संतुष्टि आनंद मिलेगा? संतुष्टि आनंद तो दूर की बात है, आम तो पहले मिले, आम भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक संख्या 1-5 तक ये बताते हैं, अर्जुन, ये तो भौतिक जगत है, इज लाइक ए रेंटेड अपार्टमेंट। सोचिए, आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ चेक इन करते हैं, रूम में जाते हैं, और रूम में जाते ही कहते हैं, अरे यहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन पसंद नहीं आया, दीवार का पेंट उतार देते हैं, कारपेट उतार देते हैं, और एक अलग कारपेंटर को बुलाकर या किसी को बुलाकर उस दीवार का पेंट बदल देते हैं, फर्नीचर बदलते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। क्या ये मूर्खता की निशानी है या नहीं? इस अ रेंटेड प्लेस। आपने कुछ दिनों के लिए, होटल के ओनर ने आपको वहाँ रहने की परमिशन दी है, आप उसको अपना असली घर समझकर इतना समय व्यर्थ कर दें, उससे इतना आसक्त हो जाएं, अंत में क्या होगा? जब होटल के मालिक को पता चलेगा, धक्के मार के निकालेगा, नहीं निकालेगा। उसी प्रकार इस भौतिक दुनिया में व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, धन संपत्ति कमाता है, आजीवन मेहनत करता है, अंत में हर जीव को इस शरीर रूपी घर को त्यागना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी परिश्रम करो, सोच समझ के करो, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। अगर इस भौतिक जगत को आप परमानेंट रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद सब कुछ छीन लिया जाता है। मृत्यु से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसके ऊपर। एक महान राजा थे, उन्होंने पूरे संसार में भ्रमण करके अपना राज्य स्थापित किया। बड़ा शक्तिशाली राजा था ये, और 32 साल की उम्र में इसको एक प्रकार की बीमारी होती है, जिस कारणवश इस पर सिर्फ जीने के लिए 5 दिन बचे होते हैं। अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है, हे मंत्री, सिर्फ मुझे 5 दिन बचे हैं, मेरे प्राण इस शरीर में हैं, मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि मैं 5 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, मेरी आखिरी इच्छा है। मंत्री बोलता है, यस सर, बोलिए क्या इच्छा है। तो कहता है, जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहता हूँ जो मेरे डॉक्टर्स थे वो मेरे मृत शरीर को उठा के लेके जाएं। ऑल राइट, मंत्री कहता है, जिस रास्ते से मुझे शमशान भूमि पर लेकर जाया जाए, उस रास्ते को सोने हीरे जवाहरात जितना भी धन संपत्ति मैंने इस पूरी दुनिया में भटक भटक के लोगों से छीना है, चुराया है, सब रास्ते में फेंक दो। मंत्री कहता है, ऑल राइट। और तीसरी इच्छा, जब मैं उस शमशान भूमि की तरफ जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे हाथ बाहर निकले होने चाहिए और मेरी मुट्ठियाँ खुली होनी चाहिए। तो मंत्री कहता है, ठीक है। वह मंत्री चकरा जाता है, क्या हुआ हमारे राजा को, मृत्यु के समय पागल हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो मंत्री हिम्मत करते हुए पूछते हैं, राजन, अगर आप बुरा ना माने, कृपा करके बताएंगे आपकी इन इच्छाओं का कारण क्या है। तो राजा बोलता है, हे मंत्री, मैंने अपने पूरा जीवन 16 साल की उम्र से लेकर 32 साल का हो गया हूँ, 16 साल तक मैं युद्ध करता रहा, आतंक फैलाया, कभी जीवन का आनंद नहीं उठा पाया। तो जब मेरे सामने मृत्यु आई है, मैं लोगों को एक बहुत प्रमुख शिक्षा देना चाहता हूँ जो मुझे शिक्षा मिली है। तो मंत्री पूछते हैं, राजन, क्या शिक्षा है। तो बताते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी मृत शरीर को मेरे डॉक्टर्स लेके जाएं, वो मैं ये सिखाना चाहता हूँ समाज को, आप कोई भी क्यों ना हो, मृत्यु तो सबको आती है और आपका रक्षा मृत्यु से कोई नहीं कर सकता। चाहे आपके पास कितना ही बेस्ट डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे आपके सगे संबंधी कितना ही प्रेम आपसे क्यों ना करते हो, तो कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता जब आपकी मृत्यु होने को आती है। दूसरी इच्छा थी मेरी, रास्ते पर सोने जवाहरात फेंक दीजिए, बिछरा दीजिए, जब मैं वहाँ से मेरे मृत शरीर को लेकर जाया जाए। मैं समाज को बताना चाहता हूँ, आप जितनी भी धन संपत्ति कमाते हैं वो सब व्यर्थ होती है अंत में, क्योंकि आप उसको अपने संग अगली गति के लिए नहीं लेकर जा सकते। और तीसरी चीज़, मेरे हाथों को खुला छोड़ना, मैं समाज को सिखाना चाहता हूँ, जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, जब इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है। बहुत प्रमुख 3 बातें इसमें बताई गई हैं, जो सारांश में इस चैप्टर में भी समझाई जा रही है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, क्यों इस भौतिक दुनिया को इतना सीरियसली हम अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अधिक से अधिक धन संपत्ति कमाना चाहता है, किसके लिए, अंत में तो सब छीन लिया जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपना समय इस भौतिक दुनिया में धन संपत्ति कमाने में नहीं, अपना सही कल्याण समझिए। और सही कल्याण क्या है, इस भौतिक रूप जो जगत है उसके प्रति आपकी जो आसक्ति है उसको ज्ञान के बल पर नष्ट करते हुए अपना लक्ष्य आध्यात्मिक जगत का बनाइए और वहाँ जाइए। वो आध्यात्मिक जगत जहाँ कोई ना दुख है, ना परेशानी है, ना जरा व्याधि जन्म मृत्यु जैसे कष्ट हैं, जहाँ व्यक्ति सदैव आनंद में रह सकता है। तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु, क्या मैं इस भौतिक दुनिया में खुश नहीं रह सकता, क्या आध्यात्मिक जगत जाना आवश्यक है। तो भगवान फिर कृष्ण के, अर्जुन के मन में उठे इस प्रश्न के जवाब देने के लिए 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक वर्णन करते हैं आध्यात्मिक जगत साथ ही साथ भौतिक जगत का। भगवान श्री कृष्ण 6ठे श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ना तद भास्यते सूर्यो ना शाशंक न पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामा परमा मम। भगवान श्री कृष्ण सारांश में यह अर्जुन को आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते बताते हैं, अर्जुन, जो आध्यात्मिक जगत है वो एब्सोल्यूट है, वहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं, वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवित जीवन व्यतीत करता है, यहाँ तक कि व्यक्ति को वहाँ पर सूर्य की किरणें या चंद्रमा पर भी निर्भर नहीं होना पड़ता। वो सेल्फ इफल्जेंट जगह है जहाँ का एक एक कण आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, तो प्रभु अगर ऐसा है लोग वहाँ क्यों नहीं जाते, क्यों लोग इस दुनिया में रहते हैं? तो कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, यही तो प्रश्न मेरा है, वाई डू यू स्ट्रगल, आप इस भौतिक दुनिया में इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन बोलते हैं, प्रभु मैं तो कोई कष्ट नहीं झेल रहा, मेरे जीवन में तो कोई कठिनाई नहीं है। कई बार लोग हमें यही बताते हैं, कहाँ भौतिक जगत में परेशानी है, हमारा जीवन तो इतने आनंद में है। भगवान कहते हैं, नहीं, गलत। और साथ में श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, मम एवांस जीव लोके जीव भूता सनातना मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हे अर्जुन, सब इस भौतिक दुनिया में दुखी हैं। सबसे पहले भगवान बताते हैं, मम एवांस जीव लोके, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं। मन सृष्टानि इंद्रियाणि, मन और षष्ठ इंद्रियाणि, छह प्रकार के इंद्रियां हैं जिसका मन, उनके संग में रहकर प्रकृति प्रकृति स्थानी कर्षति, जीव हमेशा कर्षण मतलब हमेशा दुखी रहता है। हे अर्जुन, यहाँ किस प्रकार का सुख है? आप भी सोचिए, क्या है सुख की परिभाषा इस भौतिक जगत में? उदाहरण के रूप में, अगर मैं अभी आपको 1 लीटर बिस्लेरी का पानी दूँ और अगर आपको प्यास ना लगी हो तो क्या आप उस पानी का आनंद ले पाएंगे? हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर वही 1 लीटर बिस्लेरी का पानी जो रेगिस्तान में भटकता हुआ व्यक्ति कड़ी धूप में, जिसको बहुत लंबे समय से प्यास लगी है, अगर मैं उसको 1 लीटर पानी ला के दूँ तो वो कितना आभारी होगा मेरे प्रति, हाँ या ना? वो एक एक बूंद का पानी कितने स्वाद से पिएगा, यस और नो? तो प्रश्न मेरा ये बनता है, पानी तो वही है, एक व्यक्ति स्वाद लेकर पीता है और दूसरा व्यक्ति पीने को तैयार नहीं है, कारण क्या है? कारण बड़ा सरल है, उस व्यक्ति को अब स्वाद ले लेकर पी रहा है, उसको पानी पीने में बड़ा आनंद आ रहा है, और यहाँ व्यक्ति पीने को तैयार नहीं है। क्यों? इस भौतिक दुनिया का नियम है, जितना व्यक्ति कष्ट झेलता है, परेशानी झेलता है, उतना ही उसको आनंद का आभास होता है। उदाहरण के रूप में, कभी अगर आपको भूख लगी हो और जब माँ खाना बना के दे, खाने में स्वाद आता ही नहीं आता है, और जब आपको भूख ना हो, आपकी माँ आपको आपका स्वादिष्ट पकवान भी दे दे, तब आपको उसमें उतना स्वाद नहीं आता। मतलब क्या है? जितना कष्ट उतना सुख। क्या ये सुख है? ये तो कष्ट ही है। जब भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ये कष्ट कहलाते हैं। जब गर्मी लगती है तो एसी खोल देते तो व्यक्ति को लगता है, हाँ कितना आनंद है। उस आनंद का एहसास आपको इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसका कष्ट भोगा। जाइए उस व्यक्ति से पूछिए, जहाँ -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसके घर में एसी चलाइए, पकड़ के पीटेगा, बोलेगा बाहर वैसी इतनी ठंडी है, क्यों ठंडी कर रहा है? मतलब क्या है? इस भौतिक दुनिया में हमारे सुख का आनंद तब तक ही है जब तक हमने दुख भोगा है। उसी चीज की बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। इस समय एक साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, उसके रूप में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति हो सकता है ये सुन के बोले, अरे किसने देखा है अगला जन्म, मैं तो अपना जीवन बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, विल सी व्हेन एवर डेथ कम्स, मृत्यु जब आएगी तब देखेंगे, आज तो मेरे पे धन संपत्ति सब कुछ है तो मैं अपना जीवन एंजॉय करूँगा। तो भगवान कहते हैं, हे मूर्ख, यू आर मिसगाइडेड, तुम्हें समझ नहीं है कि तुमने अगर अपने जीवन को आज सही रूप से नहीं जिया तो अगली गति क्या मिलेगी? अगली गति क्या है? पुनर्जन्म तो निश्चित है। और 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतिश्वरः घृत्वितानि समयाति वायुगंधानि वाशयात्। इस 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। फिर एक बार पुनर्जन्म के बारे में भगवान बताते हैं, क्या मतलब है इसका? ये जो मनुष्य जीवन है उसमें, उसको शास्त्र में बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जंक्शन। आप कभी जंक्शन पे गए हैं? उस जंक्शन से हर प्रकार की गाड़ियाँ जाती हैं अलग अलग रास्तों के लिए, हाँ या ना? उसी प्रकार ह्यूमन लाइफ, ये जो मनुष्य जीवन है, एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा मौका है जहाँ व्यक्ति चाहे तो पक्षी के योनि में, पेड़ पौधों की योनि में, पशु के योनि में, मनुष्य की योनि में वापस, देवी देवताओं की योनि में, या फिर कहो तो वैकुंठ धाम जा सकता है। और वो क्या निर्णय करता है, हम कैसे वापस जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा चॉइस, हमारा निर्णय क्या है। उदाहरण के रूप में, मनुष्य है जिसको चॉइस लेने का या करने का मौका दिया गया, हाँ या ना? सोचिए आप एक जू के मालिक हैं और दोपहर में शेर को खाना खिलाने के लिए जाते हैं। जब शेर के पिंजरे के पास जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मांस, हे शेर ये मांस खा। जब गाय के पास जाते हैं तो बोलते हैं, हे गाय ये घास खा, हाँ या ना? जब वही ओनर होटल में जाते हैं तो वेटर आके पूछता है, मालिक घास या मांस, हाँ या ना? तो हर समय हमें चॉइस लेने का मौका है। जैसे कि दूसरा उदाहरण, सोचिए आप ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हैं पर आपने टिकट नहीं लिया, टीसी आ जाता है, बोलता है टिकट दिखा, और आप बोलते हो, मालिक माफ़ करिए मैं तो पहली बार आया, मुझे नहीं पता था ट्रेन में टिकट लेना होता है। तो आपको क्या लगता है टिकट कलेक्टर बोलेगा, तेरे को फाइन भरना पड़ेगा। क्यों? तो जब फाइन भरेगा तो तुझे पता चलेगा कि अगली बार गलती नहीं करना। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्जुन मनुष्य योनि को साधारण मत मानिए, इसलिए मैंने कर्म का नियम बनाया है ताकि लोग सतर्क हो सकें और गलत कामों में ना पड़ें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, तो प्रभु मृत्यु क्या बात, होता क्या है, पुनर्जन्म का मतलब क्या है, क्या होता है? तो श्लोक संख्या 9 में बोलते हैं, अर्जुन व्यक्ति फिर जन्म लेता है, फिर उसको अलग आँख नाक, उसको कान मुँह, इस प्रकार से एक अलग शरीर मिलता है और उस शरीर में फिर वो सुख और दुख भोगने में लगा रहता है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु अगर पुनर्जन्म हो रहा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें ये सत्य दिखाई क्यों नहीं देता? तो भगवान 10वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन जो ना समझ हैं, जो मूर्ख हैं, उनको सत्य नजर नहीं आता। और 10वें श्लोक में कहते हैं कृष्ण, उत्क्रामंतम सिथम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। ये जो ज्ञान का सब्जेक्ट मैटर है वो वही देख सकता है जिसने इस ज्ञान का अध्ययन या श्रवण करा हो। जो मूढ़ है, जो मूर्ख व्यक्ति है, अपने आंखों के सामने अनेक अनेक लोगों को मरते हुए देख, उसको ऐसा लगता है मृत्यु उसको कभी नहीं आएगी। इस प्रकार वो मूढ़ व्यक्ति कभी सत्य को समझ नहीं सकता। मूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है, उदाहरण के रूप में उस मूढ़ शब्द की परिभाषा भी देख लेते हैं। सोचिए, कल्पना करिए, आप पुणे से दिल्ली फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं, फ्लाइट उड़ चुका है और दिल्ली लैंड होने वाला है। एकदम से हवाई जहाज में हल्ला मचने लगता है, आतंकवादी 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 मच के शोर मचने लगता है। और जब आप अपनी सीट से उठकर देखते हैं तो आपको नजर आता है 2 आतंकवादी पिस्तौल लेकर खड़े हैं, बोलते हैं हमने इस हवाई जहाज को कब्जा कर लिया है, अब ये दिल्ली नहीं उतरेगा, अब ये हवाई जहाज लखनऊ जाएगा। सब बड़े गंभीर हैं, कांप रहे हैं, क्या होगा हमारा। आप अपने पड़ोसी पैसेंजर की तरफ मुड़ के देखते हैं, उसके मुख पे बहुत बड़ी मुस्कान है, वो मुस्कुरा रहा है। भाई क्यों मुस्कुरा रहा है? वो आपकी तरफ देख के बोलता है, दे ताली, क्यों क्या हुआ? टिकट तो दिल्ली का खरीदा, फोकट में लखनऊ का सैर हो रहा है। क्या कहेंगे इस व्यक्ति को, मूढ़ या विज्ञानी? तो चलिए, वो लखनऊ तक प्लेन जा रहा है, लखनऊ तक प्लेन पहुँचने ही वाला है, फिर आतंकवादी घोषणा करते हैं, नहीं अब ये प्लेन कैलकटा जाएगा। सब कांपने लगते हैं, अरे क्या हुआ, हम तो पुणे से दिल्ली जा रहे थे, अब कैलकटा पहुंच गए। फिर आप अपने पड़ोसी की तरफ देखते हैं, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और आपको देख के बोलता है, भाई साहब दे ताली, क्यों? जाना तो दिल्ली का था, लखनऊ की फ्री सवारी, अभी तो कैलकटा भी देखने को मिल जाएगा। और फिर जैसे ही कैलकटा प्लेन पहुंचने वाला होता है और फिर आतंकवादी घोषणा करते हैं, नहीं हम भारत में प्लेन नहीं उतारेंगे, अब हम प्लेन दुबई लेकर जाएंगे। सब कांप जाते हैं, मिडिल ईस्ट में प्लेन जाएगा हमारा, क्या होगा, सब घबरा रहे हैं। और आपका पड़ोस में बैठा हुआ पड़ोसी बड़ा खुश हो रहा है, फिर आप उसकी तरफ देखते हैं और इस बार आपको देख के बोलता है, भाई साहब दो ताली। और आप बोलते हैं क्या हुआ? बोला, भाई साहब ना वीजा ना पासपोर्ट, फोकट की विदेश की सवारी है, नहीं है विमूढ़ा। इसको कहा जाता है मूर्ख की परिभाषा। जो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, जिसको वो फ्री की सवारी कह रहा है, कब कैसे वो आतंकवादी इसके जीवन को ख़त्म कर सकता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति, ये जो एक एनालॉजी जो उदाहरण दिया, इसी प्रकार हम सबका अपहरण हो चुका है। भगवान 2-3 बार भगवद्गीता में करते हैं, कहते हैं माया अपहृतम, कई बार कहा गया है भगवद्गीता में अपहृत हो जाना, क्या मतलब है? हर जीव का अपहरण हो गया है काम रूपी दुश्मन से, जिस काम मतलब भौतिक इच्छाओं के कारण हम बार बार मजबूर होते हैं इस भौतिक दुनिया में जन्म लेने के लिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन समझिए, मूर्खों की तरह काम मत करिए, कृपा करके अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन व्यर्थ ना करें, आध्यात्मिक इच्छा पैदा करें। और वो कैसे पैदा होती हैं? भक्तों का संग लेकर। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अगर प्रभु ये सच्चाई है तो प्रश्न ये बनता है, लोग आपको क्यों नहीं मानते, लोग आपसे संबंध क्यों नहीं जोड़ना चाहते? इस प्रकार अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, मतलब लोगों का मन इंद्र तृप्ति के प्रति है, पर वो आपके प्रति क्यों नहीं आसक्त होते? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक इसका वर्णन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन लोगों को ज्ञान नहीं है कि मैं ही करता हूँ उनका, मैं ही उनका पोषण करता हूँ। और फिर भगवान यहाँ 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक बताते हैं कैसे जीव का पोषण करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण, और फिर सोचते हैं क्या सही में भगवान हमारा पोषण करते हैं नहीं। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए दूध कहाँ से आता है तो बोलेगा डेयरी से। चलो भाई डेयरी से आता है। डेयरी में दूध कहाँ से आता है? अल्टीमेटली गौशाला से। गौशाला में दूध कहाँ से आता है? गाय से। गाय को दूध कहाँ से मिलता है? गाय घास खाती है और फिर दूध बनता है। तो प्रश्न बनता है घास कहाँ से आता है? घास के लिए तो भाई जमीन से घास आती है, जमीन में घास उगती है। जमीन में घास कैसे उगती है? जब बारिश का पानी होता है तो तभी तो घास उगेगी। बारिश का पानी कहाँ से आता है? तो कोई बोलेगा समुद्र से। और समुद्र के पानी को बारिश के पानी में कौन बदलता है? आप या मैं या नासा या इसरो? कौन बदलता है समुद्र के पानी को बारिश के पानी में? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, समुद्र में इतना पानी आया कहाँ से? कौन लाया इतना पानी? जो इतने समय से पृथ्वी इतनी पुरानी हो चुकी है, इतने समय से बारिश हर साल होती है, पूरे दुनिया भर में बारिश होती है, पर समुद्र का पानी कभी ख़त्म नहीं होता। कौन भर रहा है समुद्र के पानी को? तो उसका उत्तर सिर्फ एक है, भगवान। और कौन हो सकता है? ये केवल दूध के नहीं, अब खाने के किसी भी पदार्थ को लेकर देखें तो सच्चाई क्या है? भगवान। एक उदाहरण दिमाग में आ रहा है कि कैसे एक बार एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए आता है और कहता है, मैं बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी का मालिक हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, तुम चोर हो। वो कहता है, नहीं स्वामी जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बड़े सच्चाई से काम करता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं, कैसे बताओ जरा। बोलो स्वामी जी, जो मेरी कंपनी है, हम सीमेंट बनाते हैं, हमारी सीमेंट कंपनी का नाम हमारे परिवार के नाम के ऊपर पड़ा है। प्रभुपाद कहते हैं, तभी तो तुम्हें चोर कह रहा हूँ, उसको समझ नहीं आया। प्रभुपाद पूछते हैं, बताओ सीमेंट कहाँ से आता है? तो व्यक्ति कहता है, पहाड़ से आता है। प्रभुपाद पूछते हैं, पहाड़ तुम्हारे पिता ने बनाया है? पहाड़ किसने बनाया है? तो फिर उसको समझता है, अरे हाँ, पहाड़ तो भगवान का दिया हुआ है। तो प्रभुपाद कहते हैं, तुम्हारी कंपनी का नाम तुम्हारे परिवार के नाम के ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे कंपनी का नाम गोविंद सीमेंट होना चाहिए, मतलब भगवान हरि के नाम पे होना चाहिए। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है, स्वामी जी, मैं फिर भी चोर नहीं हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, कैसे? बोला, स्वामी जी, हर साल मैं जन्माष्टमी के उपरांत भगवान की सेवा के लिए थोड़ी दक्षिणा देता हूँ, दान देता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं, ऑल राइट, तुम छोटे चोर हो, बड़े चोर नहीं हो। इस प्रकार से एनीवेज, तो यहाँ 12वें श्लोक तक लेकर 15वें श्लोक तक भगवान उदाहरण के रूप में बताते हैं, हे अर्जुन, जो सूर्य की किरणें हैं वो मैं हूँ, जो चंद्रमा की किरणें हैं वो मैं हूँ, और चंद्रमा की किरणों से ही सब्जी फल फूल में स्वाद आता है। हे अर्जुन, मैं ही इन कॉस्मिक एंटिटीज़, जो ये प्लैनेट्स हैं, उसमें समाकर मेरी शक्ति के कारण ये सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाई है, किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। फिर 14 श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन, जठर अग्नि किसकी शक्ति है? मेरी शक्ति है, जिसके कारण व्यक्ति खाना डाइजेस्ट कर पाता है। प्राण शक्ति किसकी है? मेरी शक्ति है। इस प्रकार 12वें श्लोक से लेकर 14 श्लोक तक भगवान चर्चा करते हैं कैसे मैं एक भौतिक शरीर का पोषण करता हूँ। उसके बाद 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे मैं सूक्ष्म शरीर का पोषण करता हूँ और साथ ही साथ आत्मा का भी पोषण करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मथा स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हे अर्जुन, मुझसे ही ज्ञान अज्ञानता बुद्धि सब मुझसे आती है, उस सूक्ष्म शरीर का पोषण मैं करता हूँ। केवल इतना ही नहीं, वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। हे अर्जुन, मेरे से ही वैदिक शास्त्र का ज्ञान आया है। जिस ज्ञान को प्राप्त करके एक बद्ध जीव इस भौतिक जगत को त्याग कर आध्यात्मिक जगत जा सकता है, इसी प्रकार मैं आत्मा का भी पोषण करता हूँ। और जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाए, निश्चित ही रूप से वो मेरी सेवा करेगा, मेरे प्रति प्रेम का संबंध जोड़ना चाहेगा। और अंत में आखिरी 3 श्लोकों में भगवान सभी वेदांत का सार बताते हैं। भगवान कहते हैं वेदांत मैंने ही लिखा है, मैंने ही रचना करी है। तो उस वेदांत का सार बताते हैं 16वें 17वें 18वें श्लोक में, जहाँ 16th श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन 2 प्रकार के जीव होते हैं, शर अक्षर। एक जो मृत्यु पाता है, दूसरा मृत्यु कभी नहीं पाता। मतलब एक का विनाश होता है, एक का विनाश कभी नहीं होता। और फिर 17वां 18वें श्लोक में बताते हैं भगवान, एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होती है, जो जिसको ब्रह्मन और पराब्रह्मन कहा जाता है। और जो पराब्रह्मन या परमात्मा है वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन 3 श्लोकों में वेदांत का सार बता देते हैं। वेदांत का सार क्या, मैं कौन, भगवान कौन है, और भगवान और जीव के बीच का संबंध क्या है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय को समाप्त करते हैं और कहते हैं, अर्जुन जो इस ज्ञान को जानता है, 19वें श्लोक में, यो माम एवं असम्मुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो मेरी भक्ति में लगता है। और अंत में 20वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें एसेंस ऑफ ऑल, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान जो चाहिए था, जिसकी आवश्यकता थी, वो तुम्हें समझाया है। अब आप चुनिए आपको कौन सा मार्ग चुनना है। भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है, या भौतिक जगत में रहते हुए भगवान की सेवा का मौका या फायदा उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और अंत में भगवत धाम की तरफ पहुँचना है। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ये 15वां अध्याय समाप्त करते हैं, जिसमें 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है। पहली चीज, ये भौतिक दुनिया जो है, भौतिक जगत, ये हमारा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, आध्यात्मिक जगत हमारा परमानेंट रेजिडेंस है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 6 से लेकर 11 तक अध्यात्म जगत और भौतिक जगत का वर्णन करते हैं। कहते हैं, अर्जुन अगर कोई अध्यात्म जगत को प्राप्त नहीं करता तो उस व्यक्ति को दोबारा पुनर्जन्म लेकर इस दुनिया में 84 लाख योनियों में से एक योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगर मैं ही सबका पोषण करता हूँ तो लोग मुझे क्यों नहीं समझते। तो भगवान बताते हैं, अर्जुन मैं किस प्रकार से लोगों के भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा का पोषण करता हूँ। और अंत में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वेदांत का सार क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे रिश्ते को जानना ही भगवान का सार है। अगर किसी को इतना ज्ञान हो तो निश्चित रूप से वो मेरी भक्ति करेगा, मेरे संग प्रेम का संबंध जोड़ना चाहेगा और बड़ी इच्छा और प्रेम से दोनों हाथ को उठाकर हरि नाम में भाग लेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र को अटेंड करने के लिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।